Shri Chaitanya Charitamrita Adi Lila Pratham Adhyay Shlok Sankhya 46. Nay, 46. Kabal Day. Chambers. Kramashah Tatparya. Anuvad. Guru mere se abhinna swikar karna chahiye, aur kisi prakar se bhi inko kabhi bhi apaman nahi karna, inko irsha nahi karna, aur matya buddhi artat inko sadharan vyakti jaise nahi manna, kyunki ve समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है. तात्पर्य अगर किसी का आचार्य अभिमान अथवा गुरुगिरी होते हैं लेकिन हरि सेवा भाव नहीं होते हैं, वे अपराधी मानना है. और इस अपराध पूर्ण भावना से वो आचार्य होने से अनुपयुक्त होते हैं. सद्गुरु सदैव अहैतुकी भगवत भक्ति करते हैं. इस परीक्षा से उनको भगवान का साक्षात प्रकट मानना चाहिए और नित्यानंद प्रभु के यथार्थ प्रतिनिधि. ऐसे गुरु आचार्य देव कहलाते हैं. भौतिकवादियों ईर्ष्यायुक्त भावना से और इंद्रिय चित्ति भावना भावित से असंतुष्ट होने वैसे भौतिकवादियों सद्गुरु को निंदा करते हैं. लेकिन वास्तव में एक सद्गुरु वैष्णव आचार्य भगवान से अभिन्न है और इसलिए ऐसे आचार्यों को ईर्ष्या करना भगवान स्वयं ईर्ष्य करना है. और ऐसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं होगा. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. गुरु का लक्षण क्या क्या है? ऐसा है दुनिया में बहुत गुरु है या एक्चुअली बहुत गुरु नहीं है, गुरु बहुत कम है. लेकिन कहते हुए गुरु, गुरु गिरी करने वाले बहुत है. तो खाली बोलने से मैं गुरु हूं ऐसे बोलने से कोई गुरु नहीं होते. गुरु होने के लिए यथार्थ लक्षण होना चाहिए. जैसे कि कोई भी बोल सकते मैं धनी हूं, मैं करोड़पति हूं, लेकिन खाली बोलने से कोई करोड़पति नहीं होते. स्वप्न में कल्पना में हम क्रोपति हो सकते, लेकिन वास्तविक क्रोपति होने के लिए लक्षण होना चाहिए कि क्रो है, अगर क्रो नहीं है तो क्रोपति नहीं है। तो गुरु का क्या लक्षण है, तो क्या पांडित्य, वैराग्य, तो वो सब होना चाहिए, लेकिन मूल लक्षण है वो शुद्ध भक्त है, कृष्ण के शुद्ध भक्त। धन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान काम आदि नापितम अनुकूल कृष्ण शून्य भक्ति रूतम। गुरु का मतलब जिनके हृदय में दूसरी कामनाएं नहीं रहते हैं और स्वयं शुद्ध भक्ति करते हैं, कृष्ण की शुद्ध भक्ति, और शिष्यों को कैसे, शिष्यों को की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, सुप्त कृष्ण भक्ति पुनर्जागरण करना, और वो ही जीवन का एक ही उद्देश्य है, और कैसे शुद्ध भक्त प्राप्त होते हैं और प्राप्त करने से क्या कल्याण होते हैं, क्या उपकार होते हैं। तो गुरु ये सब अपने आचरण और चरित्र के द्वारा शिष्यों को सिखाते हैं। तो अगर एक व्यक्ति बड़ा पंडित है लेकिन वैष्णव नहीं है, गुरु नहीं हो सकते। षटकर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारदाः अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचार गुरु। तो अगर एक व्यक्ति निपुण है सभी प्रकार के कर्मखंडीय कार्यकलापों में, लेकिन वो वैष्णव है, तो वो योग्य नहीं है गुरु। और अगर दूसरा व्यक्ति है जो स्वपच है, अर्थात ऐसे कुल में जन्म लिया जिसमें अभ्यास है कुत्ता का मांस मांस खाना, मतलब सबसे नीच वंश उद्भूत है, लेकिन वो वैष्णव है, तो वो गुरु है। तो अगर कोई ऐसे नीच वंश में जन्म लेते हैं जिसमें नीचाचार होते हैं, तो वैष्णव होने से तो वो नीचाचार चढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गुरु वैष्णव खुद का मांस खाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन संभव है कि एक व्यक्ति का पूर्वाभ्यास ऐसे था, लेकिन अभी एक शुद्ध वैष्णव की कृपा से सिंचित होते हैं और ऐसे पूरा जीवन परिवर्तित हो गया है और अभी शुद्ध वैष्णव है। तो इसलिए एक महान अपराध है शुद्ध वैष्णव के पूर्वाभ्यास को निंदा करना। अगर कोई बोलते है कि वो एक भक्त तो शुद्ध भक्ति करते हैं, लेकिन अगर कोई बोलते है कि वो उसका जन्म यावन कुल में था, वो जन्म से भक्त नहीं है, और ऐसे ही वो वैष्णव को दोषारोप करते हैं, तो वो परम निंदक है। और अगर ऐसे वैष्णव निंदा करते हैं, अगर अपना जीवन में अपना चरित्र में ऐसे कोई दोष नहीं है, तो फिर भी भगवान की भक्ति कभी नहीं मिलेंगे उस दोष से। वो नीचाचार करने से और बड़ा दोष है। शुद्ध वैष्णवों को ऐसे निंदा करना कि वो पहले ऐसे किया था। तो ऐसे गुरु का मुख्य लक्षण है कि वे शुद्ध वैष्णव है। शुद्ध वैष्णव का मतलब सेवा भाव अधिक है और इनके जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। कृष्ण सेवा के बिना कोई दूसरा काम नहीं करते हैं, कोई दूसरा चिंतन नहीं करते हैं, कोई दूसरा वाचा नहीं बोलते। तो यही शुद्ध भक्ति है। और अवश्य ही ऐसे भक्त का चरित्र में पांडित्य होगा और वैराग्य होगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है जंग अत्याशु वैराग्यम ज्ञानं चायद हैतुकम। शुद्ध भक्ति करने से आपने आप अर्थात कृष्ण की अहैतु की कृपा से भक्त अगर ज्यादा शिक्षित नहीं हो तो बड़ा पंडित होते। सब शास्त्रों का सिद्धांत इनके हृदय में प्रकट होते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्याई ते कथिता ह्यां तत् प्रकाशन्ते महात्मनः। जिनकी पूरी श्रद्धा है शास्त्र में और भगवान और गुरु में। यस्य देवे परा भगवान में और गुरु में, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में गुरु और कृष्ण की कृपा से तो सब शास्त्रिक गुह्य मर्म प्रकट होते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो गुरु का मतलब जो अंध लोग को चक्षु दान देते, अर्थात हम अंध है, हम देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं लेकिन भगवान को नहीं देते। तो गुरु हमको दिव्य दृष्टि देते हैं, जैसे कि हम सर्वत्र सदैव भगवान को देख सकते। यो माम पश्यति सर्वत्र सावंचामयी पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमयी न प्रणश्यति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त सदैव मुझको देखते हैं और मैं सदैव मेरे भक्तों को देखता हूं। तो कैसे देखना है? प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषं तमोगुणं। अभी हम भगवान को नहीं देखते लेकिन वो प्रेमंजन जब आंखों को प्रेमंजन लगाना है, अर्थात जब हमारी दृष्टि पूरी भक्ति संयुक्त होते हैं तो उस समय हम सदैव कृष्ण को देखते हैं। तो ऐसे ज्ञान और वैराग्य भक्तों के लिए ज्ञान और वैराग्य इतना सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है क्या? ज्ञान जो ऐसे ज्ञान जिससे भक्ति प्रकट होते हैं, वो ज्ञान महत्वपूर्ण है। लेकिन खाली शास्त्र पंडित या मैं बड़ा पंडित हूं ऐसे दिखाना, तो वो भक्तों का उद्देश्य नहीं है। भक्त शास्त्र अध्ययन करते हैं और गुरु का एक मुख्य कर्तव्य है शिष्यों को शास्त्र सिखाना। लेकिन गुरु तो खाली अनुस्वार विशारद पंडित नहीं है, व्याकरण वो तो खाली संस्कृत पंडित नहीं है। अगर संस्कृत ज्ञान बिल्कुल नहीं है लेकिन सेवा भाव पूरा है तो वही गुरु है। और अगर अपार संस्कृत ज्ञान है लेकिन सेवा भाव नहीं है, अगर खाली मैं बड़ा पंडित हूं ऐसे सोचना है, तो ऐसे व्यक्ति गुरु नहीं हो सकते। क्योंकि गुरु का मतलब जो शिष्य का अज्ञान हटाते हैं और अज्ञान अवस्था से उसको ज्ञान अवस्था में डालते हैं। तो एक प्रकार का अज्ञान है, इतने सा ज्ञान अर्जन करने से सोचना मैं ज्ञानी हूं। तो एक व्यक्ति बहुत बड़ा पंडित हो सकते हैं लेकिन साथ ही साथ बड़ा मूर्ख, तो कैसे संभव है? अगर शिक्षित होने से एक व्यक्ति सोचते हैं मैं बहुत कुछ जानते हूं तो वो मूर्ख है। जानंत एव जानंतु किंबा भुक्त्या च नहि प्रभो मनसा वचसा वापि वैभवं तव गोचराः। ब्रह्मा जी सबसे बड़ा पंडित है ब्रह्मांड में, तो इनके चार मुख है और सब मुख से वेद ज्ञान आते हैं, तो बड़ा पंडित है। लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं कहते कि कोई बोल सकते हैं मैं कृष्ण का वैभव जानता हूं, लेकिन मेरे विचार में कृष्ण को मापना, कृष्ण को पूर्ण मालूम होना इनके वैभव मापना तो मानसिक वाचसिक प्रयास से संभव नहीं है। तो अगर कोई सोचते मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो खाली ऐसे सोचने से वो अयोग्य होते हैं गुरु हो, क्योंकि गुरु ज्ञानी होते, अगर ज्ञानी नहीं है तो कैसे शिक्षा दे सकते। लेकिन वो ज्ञान तो खाली ऐसा अक्षर विसर्ग अनुस्वार इत्यादि पढ़ने से नहीं आते, वो ज्ञान आते हैं भगवान की भक्ति करने से, भगवान की हृदय प्रेरणा से। भगवान जब संतुष्ट हो तब भक्तों को इनके नाम गुण रूप लीला इत्यादि प्रकट करते हैं भक्त का हृदय में। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रियाय सेवन मुख ही जीवादो स्वयं आदो स्फुरति। तो एक व्यक्ति जितने भी बुद्धिमान है, जितने भी बड़ा पंडित है, तो अपना प्रयास से इनकी बुद्धि से भगवान के पास नहीं जा सकते और भगवान के बारे में कुछ भी malam this. So, लेकिन अगर एक मतलब भौतिक बुद्धि भौतिक प्रयास भगवान को मापना संभव नहीं है वो किसी भी प्रकार प्रयास. लेकिन अगर भगवान संतुष्ट होते एक भक्त की भक्ति से तो भगवान स्वयं अपना नाम गुण रूप लीला प्रकट करते हैं वो भक्त के हृदय में. तो ज्ञान गुरु ज्ञानी है लेकिन वो ज्ञान तो खाली पुस्तकी ज्ञान नहीं है वो आत्म साक्षात्कार है. और गुरु का और भक्तों का वैराग्य वो अभ्यास से नहीं आते हैं वो भक्ति से वो भक्ति का आनुषंगिक फल होते हैं. तो दो प्रकार का ज्ञान और वैराग्य होते हैं एक है अभ्यास से और दूसरा है आत्म साक्षात्कार से भक्ति का फल होते हैं. तो एक प्रकार का ज्ञान है शास्त्र अध्ययन करने से लोग प्रयास करते हैं शिक्षित होना. और दूसरे प्रकार का ज्ञान है जो भगवान का उपहार है. तो इसका मतलब नहीं है कि भक्तों शास्त्र नहीं पढ़ते लेकिन सेवा भाव से पढ़ते. अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं खुद को बड़ा ज्ञानी घोषणा करने के लिए तो हम कभी भी भगवान की कृपा नहीं मिल सकते. तो और एक प्रकार वैराग्य है मतलब वो हम स्वनियम ग्रहण करते कि मैं खाली तीन दिन में एक बार थोड़ा सा प्रसाद सेवन करूँगा और शीतकाल में भी तो खाली हल्का कपड़ा पहनूंगा. तो ऐसे तपस्या एक प्रकार का अभ्यास है. और दूसरे प्रकार का वैराग्य है वो स्वाभाविक कि भक्तों भक्ति में इतना तन्मय है कि कोई रुचि नहीं होती है विषय सुख के लिए भोग विलास के लिए और सेवा में इतना व्यस्त रहते हैं कि इंद्रिय सुख के लिए समय नहीं मिलते. जैसे कि व्रज के षड गोषण श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ तो दिन में एक बार हाथ में तरस प्रसाद लिए थे और रात में बहुत कम समय सोते थे क्योंकि इतनी स्फूर्ति थी भगवान की सेवा के लिए. तो ऐसा ज्ञान और वैराग्य गुरु का लक्षण है लेकिन मूल लक्षण है भगवत सेवा भाव. और अगर वो भगवत सेवा भाव नहीं होते हैं तो पुस्तकी ज्ञान होने के भी तो शिष्यों को वो सेवा भाव नहीं दे सकते. सिद्धांतविद होने के भी वो सिद्धांतिक नहीं होते. मतलब अगर कोई तर्क से सिद्धांत स्थापन कर सकते वो स्वयं अच्छी तरह समझ नहीं सकते. एक्चुअली क्या होते हैं कि अगर पंडित व्यक्ति के हृदय में कुछ भी इंद्र तृप्ति की इच्छा रहते हैं तो वो अच्छी तरह सिद्धांत समझ नहीं सकते, और ऐसा व्यक्ति तो शास्त्र की भक्ति व्याख्या करके भी तो उसमें कुछ अपसिद्धांत डालेंगे, और ऐसे ये सब अपसंप्रदाय आते हैं क्योंकि वो भक्ति पालन करते हैं लेकिन सर्वधमान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज, उसको पालन करने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं लेकिन उद्देश्य अलग है, तो इसलिए तो कीर्तन करके भी और गुरुगिरी करके भी तो असत प्रचार करते हैं, और ऐसे हम देखते हैं बंगाल उड़ीसा असम में बहुत जन्मगत वैष्णव है, वैष्णव परिवार है, और बंगाल और उड़ीसा में वैष्णव एक जात जैसे जाति, लेकिन वो ज्यादा तो इतना सुंदर कीर्तन करते और इतना निपुण होते मृदंग बजाने में और इतने मिथा कीर्तन करते हैं, लेकिन कीर्तन का श्रम के बाद घर वापस जाके मछली खाते जो मैंगलोर में भी जनप्रिय है, मछली का बदबू हमेशा आते हैं। और क्या बोलते हैं वो मछली, वो भी शाकाहार है, गंगा फल, तो जैसे कि पैर में तो फल अपने आप आते हैं, हम चास नहीं करते तो अपने आप आते, तो गंगा से माछ ले आते, उसमें क्या दोष है? क्या दोष है हमारा गुरु कहते हैं तो हमारा क्या दोष है? तो ऐसे जीव हिंसा करते हैं भक्ति का नाम है, और कोई क्या होते हैं, मैं बहुत साल बांग्लादेश में था, सब कुछ देख लिया कि कोई कोई तथाकथित वैष्णव मछली भगवान की का भोग में अर्पण करते तुलसी पत्र देखे, और कोई कोई क्या करते तो दूसरे ओ धनी व्यक्ति वैष्णव तो दो पाकशाला रखते हैं उनके मकान में, एक है ठाकुर जी के लिए और दूसरा हमारे लिए है, तो ठाकुर जी का पाकशाला में तो शुद्ध शाकाहार बनाना है और दूसरा पाकशाला में तो दूसरे प्रकार का पाक होते हैं, तो जानते हैं कि ये उचित नहीं है, इसलिए दो पाकशाला रखते। तो ये सब कूटनीति बोलते, वो जानते हैं कि ये वैष्णव के लिए उचित नहीं है, या बोलते हैं कि वो मछली वो भी शाकाहार है, हम और गर्व से खाते, हम कभी भी मांस अंडा मटन मुर्गी वो कभी भी नहीं लेता, लेकिन मछली। तो ऐसा मैं जब पहले पहले बांग्लादेश जाता था मैं कैसे संभव है, तो इतना सा कीर्तन करते हैं और निताई गो हरि बोल उत्साह से बोलते, तो कैसे संभव है कि इतना, मतलब ये परम धर्म का अभ्यास के साथ इतना निकृष्ट अभ्यास भी है, तो कैसे संभव है? संभव है कि क्योंकि एक दिशा से भाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु का प्रचार इनके देश में प्रसारित हुए, लेकिन क्योंकि वे वास्तव में हृदय में ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो कीर्तन करते हैं, भक्ति प्रवचन देते हैं और सुनते हैं, लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में कुछ है जो वे अच्छा नहीं लगते, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हम सब कुछ पालन करते हैं, तिलक लगाते हैं और कंटिन्यू तुलसी माला है, जप माला भी है, कीर्तन, घर में हम राधा कृष्ण सेवा करते हैं, थोड़ा सा अलग है। लेकिन भगवान दयालु है, अगर हमारा थोड़ा सा दोष है तो क्षमा, भगवान हमको क्षमा करेंगे, ऐसे बोल। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हरि हरि विफले जन्म गुआनु मनुष्य जन्म पाई और राधा कृष्ण ना भोजिय जनिय शून्य बीस खाई। हरि हरि विफले निष्फल के रूप में जन्म गवाय जन्म व्यतीत किया, मनुष्य जन्म पाया मनुष्य जन्म मिल के राधा कृष्ण भजी, राधा कृष्ण की सही सेवा नहीं की, और ऐसे जानिए सुनिए जन के सब कुछ सुन ले, लेकिन बीस करते अपराध करते। तो इसलिए वो सावधान सावधानी से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो ऐसे दुनिया में ही बहुत गुरु है तो जो कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते तो वे गुरु नहीं हो सकते, और वैष्णव का वेश में भी बहुत है जो वास्तविक शैतान है, तो बहुत उचनी कथा बोलते, लेकिन खुद का जीवन में व्यवहार लाके और सिद्धांत में, सिद्धांत अपसिद्धांत होते। तो ऐसे हम अज्ञानी है तो कैसे हम मालूम सकते, कैसे हम सद्गुरु को पहचान कर सकते? ब्रह्मांड भ्रमते कहो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद है भक्ति मता बीच, असंख्य जीव बद्ध जीव इस भौतिक संसार में भ्रमण करते हैं, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, 84 लाख प्रकार की जीव जाति में असंख्य जीव भ्रमण करते हैं। तो एक व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलके कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते और गुरु की कृपा से भक्ति लता बीज मिलते, जिससे भक्ति लता उठते हैं और भक्ति लता से कृष्ण प्राप्ति होते हैं, अर्थात
कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते और गुरु की कृपा से कृष्ण को मिलते। तो कौन जीव, किस प्रकार का जीव गुरु मिलते हैं कृष्ण की कृपा से, जो भाग्यवान है, और वो भाग्य किस प्रकार है, तो लॉटरी जैसे ऐसा नहीं है। ऐसा भाग्य का उदय होते हैं जिनके हृदय में वो वास्तविक इच्छा होते हैं भगवत प्राप्ति करना, भगवान की सेवा करना। तो अगर एक व्यक्ति के हृदय में इच्छा होती है कि हे भगवान आप कौन है और कैसे कैसे आपको प्राप्त करना है मुझे मालूम नहीं, फिर भी मेरी प्रगाढ़ इच्छा है आपको प्राप्त करना, तो ऐसे निष्कपट व्यक्ति को गुरु भेजना है भगवान कृष्ण के द्वारा। एक और विचार है कि महद्विचलनम नृणम गृहेशु दीन चेतसाम, भगवान इनकी दया से इनके प्रिष्ट प्रिय प्रतिनिधि जन वैकुंठ जगत से भेज देते हैं। जैसे कि इनके देखने से, सेवा करने से, सुनने से दीन चेतस दीन व्यक्तियों का भाग्य की सृष्टि होगी और ऐसे शुद्ध वैष्णवों की कृपा से भगवत सेवा अनिच्छुक होने के भी इनके हृदय में इच्छा की उत्पत्ति होगी भगवान की सेवा करने। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद हमारा अपना जीवन में हमारा भाग्य था कि श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में आए थे और हमारा ज्ञान नहीं था कृष्ण के बारे में, इच्छा नहीं थी भगवान की सेवा करने, फिर भी इनका आदर्श चरित्र देखने से, इनके स्वयं प्रकट आध्यात्मिक तेज देखने से, इनकी भगवत कथा सुनने से जिसमें भगवान की शक्ति स्वयं स्फुर्त है, इनका ऐसा प्रभाव से, इनके असंख्य दिव्य गुणों से हम भी प्रभावित हुए और अभी इनकी कृपा से इस भाव ग्रहण किए, इनकी वाणी गौरवाणी प्रचार करना। तो खास इस कलि युग में जिसमें जीव सकल इतना सा पतित होते हैं, भगवान की दया अधिक होते हैं और संपूर्ण भाग्यहीन पतित जीवों को भाग्यवान बनाते हैं भगवान स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु का रूप में और इनके अति प्रिय शुद्ध भक्तों हमारे बीच में भेज देते हैं हमको उद्धार करने के लिए इनकी अहितु की कृपा से। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद हमारे बीच में आए थे और अभी गाया है, लेकिन इनके गमन के पहले हमको ये ज्ञान दिया है पुस्तक के रूप में, भगवत गीता यथारूप श्रीमद् भागवत भक्ति रसामृत सिंधु श्री चैतन्य चरितमृत। तो ऐसे एक पुस्तक के रूप में श्रील प्रभुपाद अभी तक हमारे बीच में उपस्थित है और इनकी ये सभी ग्रंथों पढ़ने से हम लाभ मिल सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद आयोजन किए, जैसे कि पथित विश्ववासियों भगवत सेवा करने से और भगवत संग करने से, अर्थात भक्त संग करने से, ये ज्ञान जो शास्त्र में है अपना जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे हम हरि गुरु वैष्णव की कृपा से और सेवा करने से हम सब पतित होने के भी भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। हम जो भाग्यहीन है भाग्यवान हो सकते हैं और ऐसे हम भगवान के धाम जा सकते। तो भगवान के धाम में भगवान के धाम जाने के लिए सेवा भाव ही होना चाहिए। तो वो सेवा भाव संचारित होने के लिए तो सेवा भावी भक्तों की संगति करना चाहिए। तो गुरु का मुख्य लक्षण है कि इनके हृदय में कृष्ण सेवा करना कोई दूसरी इच्छा नहीं रखते हैं और दूसरों को इस कृष्ण भक्ति सिखाना के बिना कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे सद्गुरु का पहचान है। ये सद्गुरु शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन सद्गुरु कैसे साथ होते तो इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। हरे कृष्ण।